अच्छा, इससे पहले हम कशीदगी की बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ शहरों में कशीदगी किस तक बढ़ चुकी है। ऐसी ही सूरतेहाल आजकल कुछ गिलगित बल्तिस्तान और सरगर्दू में भी है। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा पुरअमन और खूबसूरत इलाका जहां पर एक अरसा पहले तक बहुत ज्यादा अमन कायम था, लेकिन आप पिछले एक दो हफ्तों से देखिए कि वहां पर हालात किस कदर कशीदा हो चुके हैं। राशिद समी हमारे साथ इस वक्त कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राशिद समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी गहरी नजर है आपकी उस इलाके पर, आपका क्योंकि ताल्लुक वहां से है, आप वहां रहते हैं, आपको ज्यादा पता है वहां के हालात का। बड़ा पुरअमन, बड़ा ही अच्छा खूबसूरत इलाका था, बहुत अरसे तक वहां पर एक अमन कायम था। क्या इंटेंशनली इंटेंशंस के साथ वहां के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई वहां पर फिरका वाराना कशीदगी है? कौन से अनासिर है जो यहां पर इस तरह की कशीदगी को हवा दे रहे हैं?
जी, अस्सलाम वालेकुम शाजिया और काजी साहब और समी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस उस टॉपिक मुझे बात करने की इजाज़त दी, इनवाइट किया। अच्छा, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे, गिलगित बल्तिस्तान की न्यूज़ पे, जो वहाँ पर चलास में 250 अफराद को शहीद किया गया, जो उससे पहले 18 लोग कोहिस्तान में शहीद किए गए, इन तमाम इशू पे माफ़ कीजिएगा मगर आपके अलावा आई अप्रिशिएट, एक मीडिया ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। एक फ़िरका वाराना जो एक कशीदगी है, एक जो है किसी वजह से कराची से लेकर गिलगित तक, बल्तिस्तान तक जो अहले तशी को टारगेट बनाया जा रहा है, उस पर एक खामोशी इख्तियार की गई है मीडिया की तरफ से, जो कि जिसको पता नहीं वो ऐसा क्यों है। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में खुद आज़ादी हासिल की। एक छोटा सा आपको तजिया पेश कर दूं उसका, 1948 के बाद हमने खुद पाकिस्तान से इलहाक किया, वो अपना क्वेश्चनेबल, लेकिन उसके जवाब में जो हमारे लीडरान थे वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया, एफसीआर लगा दिया गया, हम पर एफसीआर मुसल्लत कर दिया गया आज, और हमें 1951 में हमारी बिल्कुल कंसेंसस के बगैर, हमारे कंसेंट के बगैर हमको कराची एग्रीमेंट के तहत कश्मीर इशू से नथी कर दिया गया। कश्मीर इशू से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं था, गिलगित एजेंसी हमारी अपनी एक शनाख्त थी। ये सिलसिला जो है ये चलता रहा और आज तक कायम है। आज तक एफसीआर तो 1974 में
अच्छा नहीं, ये तो आप गया, ये तो राशिद साहब आप सही बात कर रहे हैं। हम बेसिकली पर्टिकुलरली जिस चीज पे फोकस हैं वो है कि ये जो सेक्टेरियन टारगेट किलिंग है, जो बेसिकली ये जो लोग अमन तबाह करना चाह रहे हैं, ये बताइए कि वहां पर जो इस वक्त वाकया हो रहा है उसमें कौन से इंटरेस्ट ग्रुप है जो अमन तबाह कर दिया उन्होंने उस खत्ते का?
नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये सब नथी एक साथ से जुड़ा हुआ है समी साहब। बात ये है कि 1971 में जब हमने तहरीक जो थी वो स्टार्ट की पाकिस्तान से इलहाक की, मलका बल्तिस्तानी साहिबा उन्होंने ये तहरीक स्टार्ट की, उसको आज तक कायम है। उसके बाद 1996 में जब पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, हम किसी असेंबली का हिस्सा नहीं है, तो जब ये जब आपकी सियासी सूरत हाल वहां पे नहीं होगी, एक सियासी
नहीं, लेकिन अब तो वहां पर आपकी अपनी असेंबली बन गई है ना, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली भी है, वजीर आला भी है वहां पर।
समी साहब प्लीज, वहां पर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, वो कहेगा चार। पाकिस्तान के वजीर आला हमें पांच बताए जाते हैं, गवर्नर पांच। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में हम है नहीं, पाकिस्तान का प्रोविंस हम बनाए नहीं गए, हमें एक टेलीफोन कॉल कर दिया नवाज शरीफ को और उनको बता दिया गया कि जी प्रेसिडेंट साहब ये ऑर्डिनेंस कायम कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना के आई वॉश करके हमें वो दे दिया गया। पाकिस्तान का कोई पांचवा सूबा है नहीं, वो बराए नाम एक, आप यकीन करें, यूनियन काउंसिल से भी कम की उसकी पावर है। दूसरी बात मैं आपको बता चलूं, अगर इस तरफ मैं आऊं, पाकिस्तान के लिए हमारी बहुत कुर्बानियां हैं। एनएलआई ने 1948-1951 हमारे लोगों ने 1965-1975-71 उसके बाद करगिल वॉर, सियाचिन, और अब वजीरिस्तान में एनएलआई के जवान जो हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए हम फख्र महसूस करते हैं। आप करगिल वॉर देख लीजिए, करगिल वॉर में हमारी बटालियन एनएलआई 89 खत्म हो गई और उसको जब वो आगे जाके लड़े,
ये आप सही बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है उनका पाकिस्तान के साथ एक बड़ा जबरदस्त रिश्ता है और वो बहुत ज्यादा उनकी मोहब्बत है। मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूं कि ये जो इस वक्त वहां पर अमन अमान का मसला है, ये कौन से इंटरेस्ट ग्रुप है जिन्होंने वहां पर यह तबाही सारी फैलाई है?
सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बात दरअसल ये है कि वहां पर हमने जब मलका बल्तिस्तानी ने ये 1996 में यूनाइटेड नेशंस अब ले गई हैं, उसके बाद उन्होंने वहां पर स्टेट सब्जेक्ट रूल का मुतालबा किया।
जी राशिद समी साहब, हमारा फोकस इसी बात पर है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के हालात हैं वो किन अनासिर की जानिब से खराब करने की कोशिश की जा रही है?
जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम सो सॉरी बट मीडिया का जो ब्लैकआउट है वहां पर, इट इज अब आप ये देखिए कि एक आप ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मिनी बस के जलने पर आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां पे 250 आदमी लापता है, उनकी लाशें ना पता है, लेकिन मीडिया ने उस पर कोई बात नहीं की। पाकिस्तान की मीडिया, आई एम सो सॉरी, आई विल कम बैक टू योर पॉइंट, बट द थिंग इज कि जब बच्चा रिक्शे में पैदा हो जाता है तो उस पर ब्रेकिंग न्यूज आती है और अखबारों में दी जाता है, वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर कोई वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी वजह जो है वहां पे सेक्टेरियन उसकी जो वहां पे पनपी, वो एहसास महरूमी है। एहसास महरूमी इस तरह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख्वाजा सराओं पर जो है वो एक्शन ले लेते हैं, वो सो मोटो ले लेते हैं, उनके उस पर ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने 18 आदमी शहीद हो गए कोहिस्तान में, उन्होंने कुछ नहीं किया। इतने 2250 आदमियों को चलास में शहीद कर दिया गया शनाख्ती कार्ड दिखा दिखा कर, और उनको सिर्फ फिरका वरानियत पे शिया होने पर वो कर दिया गया, उस पर कोई वो एक्शन नहीं। एहसास मरहूमी जो है वहां पर इतना पनप रहा है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं।
बेसिकली जो सेटलर्स लाके सेटलर्स जो ये बात आप कैसे साहब करते हैं, राशिद समी साहब ने भी वही बात की कि जो एहसास महरूमी है, जब इंतजामिया लोगों को, रियासत जब लोगों को वो बुनियादी सहूलतें देने में नाकाम हो जाए जिसके वो हकदार हैं, यानी जो उनका लोगों का हक है।
ऐड कर दूं इनकी बात में, एक तो बात ये दुरुस्त, और फिर आप टेररिज्म यूज करते हैं टू कॉल डाउन पीपल, और एक एक पॉलिसी के तौर पे ये मैं आपको बताऊं, इसमें चाहे अंदरूनी, और जो हम अभी भी कॉलर ने बात की थी ना कि जब हम दूसरे लोगों को अपने मुल्क में आने देते हैं, वो इसको कंट्रोल करने के ऐसे ही मनफियत कंडे और ऐसे ही तरीके करते हैं। अब इन्होंने बताया इतनी कुर्बानियां दी बिल्तिस्तान और गिलगित के लोग, और हमारे लिए खूबसूरत, हम तो शायरी का मौजू है हमारे लिए, और हमने आज उसको खाक इस तरह कर दिया, तो ये ठीक कह रहे हैं कि वहाँ हमें एक्शन भी लेना चाहिए, मगर वही बात, इस एहसास महरूमी को अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो चाहे वो सिंध हो, चाहे वो जस्कम हो या ना हो, चाहे बिल्तिस्तान हो, हर जगह पे ये हमें मसाइल सामने।
और एक उन्होंने और जो बात कही राशिद साहब ने मीडिया के हवाले से कि शायद उनका जो एतराज है या जो उन्होंने अपना दुख बयान किया, मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया, बड़े इश्यूज हाईलाइट किए हैं, लेकिन शायद वो इस तरीके से उसको कवर नहीं कर सका।
पहलू भी तो मीडिया पे ही आ रहा है,
ये भी मीडिया पे ही आ रहा है, आज वो मीडिया पर ही आए और उन्होंने ये बात बयान की, तो मेरा ख्याल है कि
राशिद समी साहब आखिरी सवाल है, फिरका वराना कशीदगी है, ये सब कुछ फैलाया जा रहा है, तो अगर उलमा कराम सब मिलकर बैठे तो हालात यकीनन वहां पर ठीक हो सकते हैं।
जी हाँ, उलमा कराम अगर वहाँ पे मिले, देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि 1986 से पहले जब शबखून मारा गया था वहाँ पर, उससे पहले शिया सुन्नी इस्माइली नूरबख्शी बड़े अच्छी तरह रहते थे, हारमोनी थे, आप सुनते भी नहीं थे वहाँ पर कि ऐसा कुछ हो रहा, वो आज भी वो फ़जा कायम है। लेकिन मैं आपको फिर कहता चलूँ कि ये एक्सपोर्ट किया जाता है, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, चाइना की वहाँ पर कॉन्सनट्रेशन है, चाइना का एक्सेस थ्रू KKH जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू होता है, वहाँ पर वेस्ट जो है वो चाइना को कॉर्नर किया जा रहा है, तो जो एक कोर वॉर है जो वहाँ पर जारी है, वहाँ पर हम तो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमको मंजूर नहीं किया जा सकता, हमें पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहते हैं कश्मीर को उसको जिंदा करने के लिए, उनको जिंदा करने के लिए हमारा सांस दबाया जाएगा। तो वहां पर अब इतना एहतजाज हो चुका है कि लोग करगिल वॉर, लोगों ने लाखों की तादाद में जो है वो जुलूस निकाले, और वो उन्होंने करगिल जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए, वो ये एक बहुत बड़ा जलमिया है, उस पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं होगा तो बहुत देर हो
जाएगी।
मैं एक वो बता दूं कि वहां पर जो है 250 लोग जो है वो मिसिंग है, इस और उनकी बाजियाबी के लिए खुदारा कुछ कीजिए, उनको खत्म कर दिया गया। दूसरा, स्टेट सब्जेक्ट रूल हमें फौरन चाहिए वहां पर, और सबसे पहले छोटी बात है कि ड्योसाई से हमें रोड अगर दिया जाए थ्रू एक्सेस पाकिस्तान, क्योंकि ये जो रोड है ये हमारे लोगों के लिए बिल्कुल जो है वो खतरनाक हो चुका है। और दूसरी बात काइंडली कि हम ये चाहते हैं कि करगिल पर कमीशन बैठे, करगिल पर हमारे 250 मुजाहिदीन, हमारे जो फौजी थे वो अभी भी मिसिंग है, जब उनकी लाशें मिली थी उन्होंने पेट में घास खा के पाकिस्तान का दिफा किया था, लेकिन उसका जवाब पाकिस्तान ने हमें हमेशा महरूम।
बहुत शुक्रिया राशिद समी साहब, बहुत अच्छी आपने बात की, बात वैसे बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि अभी भी किसी बच्चे से पूछ लें कितने सूबे आपके, वो चार ही बोलेगा।
ये बात सही है, लेकिन असल जो उन्होंने देखे दो बातें, एक तो एहसास महरूमी, आप लोगों को वो सहूलियात नहीं फराहम कर रहे, दूसरे आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उनकी एक्सेस आप उनको नहीं दे रहे। और एक अहम बात का हिसाब उन्होंने ये की कि ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है, चाइना का वहां पर बॉर्डर है, जो वेस्ट है वो चाइना को, ये प्रॉक्सी वार है बेसिकली।
फिर अर्ज कर दूं, मेरी फिर सुई फंसी हुई है और अड़ी हुई है वहां पे, ये प्रॉक्सी वार है यहाँ पे चल रही है पैसिफिक रिम में, चाइना की और अमेरिका की लड़ाई है, चाइना इमर्जिंग पावर है, वो उसे 2018 में टेक ओवर करता है या ओवरटेक करता है या नहीं करता, आई डोंट नो, IMF यही कह रहा है। मगर ये कि हम अपने मफादात का तहफ़ कैसे करेंगे, हम अपने मफादात का तहफ़ इस्लामाबाद में बैठ के कोई ऑर्डिनेंस जारी करने से नहीं कर सकते, हमें वहां पे बुनियादी जरूरियात को पूरा करके आप आबादियों को जोड़ते हैं।